जय माँ। हम लोग सावित्री बुक वन कैंटो थ्री इसमें हैं और श्री अरविंद हमको उन सभी अवस्थाओं से ले जा रहे हैं जो जिनसे वे स्वयं गुजरे हैं और जिससे एक योगी जो उच्चतम कोटि का, क्योंकि यहाँ श्री अरविंद जो आगे बताने वाले हैं वो गीता में इसका वर्णन है, समग्रम माम, यानी एक है भगवान को एसेंशियल नॉलेज की भगवान हैं, ब्रह्म हैं आप निराकार रूप में, साकार रूप में, इत्यादि इत्यादि, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। लेकिन समग्र माम से पूरी सृष्टि में उनका कैसे कार्य चल रहा है, कैसे वो जुड़े हैं। आई विल टेल द पेज, जस्ट आई हैव नॉट स्टार्टेड, आई विल अनाउंस, प्लीज डोंट वरी। सो वो सारे समग्र माम की बात अभी हम लोग पढ़ेंगे सावित्री में। तो पेज इज 35, पेज 35 एंड वी विल रीड द लास्ट 5 लाइन्स फ्रॉम बिलो। तो हम लोग पेज नंबर 35 पर अंतिम 5 पंक्तियां वहां से पढ़ेंगे कि भगवान से पहले, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि श्री अरविंद को जो दिव्यता के साथ मिलन, जिसको हम लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, वो क्या होता है, वो वहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, द्वंद्वातीत अवस्था होती है, क्योंकि हम ईगो जो द्वंद्व क्रिएट करती है उसके पार चले जाते हैं। तो वहाँ एक चिर शांति, शाश्वती शांति नेतरेषाम, जिसकी बात होती है, और एक चिर आनंद का आभास होता है, क्योंकि सुख दुख अच्छा बुरा इस पहेली से हम बाहर निकल आते हैं। लेकिन पहेली तो है, तो उसकी भी बात बाद में करेंगे। फिर वो पिछली बार हमने पढ़ा कि लेकिन ये जो आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध होता है, ये ऐसा नहीं कि एक बार हो गया उसके बाद वो योगी हर समय उस अवस्था में रहते हैं, नहीं, उसके बाद उतार चढ़ाव, वो बीच बीच में ऊपर चढ़ते हैं और उस अवस्था में समाधिस्थ हो जाते हैं, किंतु फिर वो नीचे उतरते हैं जीवन में, उनकी प्रकृति में जो चीज़ें हैं। और ये भी बात हुई थी कि कई योगी प्रयास करते हैं कि फिर वो कम से कम संबंध रखें संसार के साथ, लेकिन इस योग में संसार में भगवान का मैनिफेस्टेशन, दिव्य के प्रकटन की बात है, तो वो उपाय तो उचित नहीं है। तो वो ऊपर नीचे अप डाउन होती है, क्योंकि हमारा शरीर मन प्राण तैयार नहीं होते हैं इस आत्मबोध को, इस आत्म प्रकाश को, इस आत्म प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। इवन वो शांति खलने लगती है, तो इस कारण चेतना वापस आती है, बाहरी क्षेत्रों में आती है, नीचे आती है, फिर ऊपर उठती है। ऐसा करते करते एक समय आता है जब पूरी तरह व्यक्ति उस आत्मप्रसाद में जीने लगता है, वही उसकी अवस्था हो जाती है। यानी इसको अगर हम प्रैक्टिकली कहें तो ऐसा होता है कि पहले आप मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम साइकिक बीइंग का अनुभव करते हैं, डिवाइन सेल्फ का अनुभव करते हैं, फिर ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम जीवन के सुख दुख के बीच में आ जाते हैं। ऐसा करते करते वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून, ये उदाहरण दिया था श्री अरविंद ने कि जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की ओर जाता है, फिर अमावस्या की ओर जाता है, ऐसे होते होते एक समय आता है जब पूरी तरह हम लोग एक आइडेंटिफाई हो जाते हैं उस सोल के साथ, और उसके बाद क्या होता है, डिवाइन सेल्फ के साथ, क्योंकि सोल तो एक द्वार है, इंडिविजुअल द्वार है हर व्यक्ति के अंदर, जिसके बाद भगवान के अनेकों अनेकों वंडर्स। इसीलिए श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, डाइव इनटू द मल्टीपल प्रोफंडिटीज ऑफ द सोल। तो वो सच है कि सोल, इंडिविजुअल सोल एक पॉइंट है, लेकिन वो ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में श्री अरविंद कहते हैं फैदमलेस पॉइंट। उसकी गहराई में जब हम उतरते हैं तो विश्व चेतना, उसकी गहराई में जब हम उतरते हैं तो सगुण निर्गुण, उसकी गहराई में जब हम उतरते हैं तो संसार, उसका सत्य, सब कुछ प्रकट होने लगता है। तो यहाँ पर उसको बहुत सुंदर ढंग से श्री अरविंद बता रहे हैं, पेज नंबर 35 नीचे से अंतिम 5 पंक्तियां, ए यूनियन ऑफ द रियल विद द यूनिक। तो हर एक इंडिविजुअल सोल जो है वो एक पोर्शन है, किसका पोर्शन है, रियल का। रियल कौन है, एकमात्र रियल जो सुप्रीम है। क्यों वो रियल है, ये सारी चीजें क्या रियल नहीं है, दे आर, लेकिन ये परमानेंट रियल नहीं है, पासिंग रियलिटीज हैं, ये अल्टीमेट ट्रूथ को नहीं दिखाती हैं, वो अपेरेंट थिंग्स हैं। तो इनका अपना एक ट्रूथ है, लेकिन इनको लेसर ट्रूथ्स या रिलेटिव ट्रूथ्स कहा गया है, ये सापेक्ष हैं, ये कई चीज़ों पर ये निर्धारित करता है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, मनुष्य की इंद्रियां एक तरह से दिखाती हैं चीज़ों को, और अगर पशु की इंद्रियां हैं वो दूसरे ढंग से दिखाती हैं, और देवता अगर उसी चीज को देखेंगे तो तीसरे ढंग से देखेंगे, और उसमें अगर हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो वही चीज जो नॉर्मल है वो भयानक लगने लगती है। तो वो देखिए कोई भी चीज परमानेंट स्थिर अवस्था में नहीं है, शर भाव में वहीं पर है वो चीज। कई बार लोग पूछते हैं ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पूछते हैं तो आप अगर बोलो आपकी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं नहीं आप कुछ छिपा रहे हैं, भाई कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं उसके अंदर जो भावनाएं हैं उसमें जो भी भाव उठ रहे हैं वो एक प्रकार से कलर कर रहे हैं हमारी दृष्टि को। तो इसलिए इसको कहा गया ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, और एक सेंस में ये रियल नहीं है क्योंकि ये अपीयरेंस है। तो रियल कौन है? एक ही है, और यूनिक कौन है? उसी रियल के अनेकों अनेकों जो जीवात्माएं हैं हर एक वो यूनिक है। तो यूनिक और रियल का मिलन, ए गेज ऑफ द एलोन फ्रॉम एवरी फेस, उसी बात को आप दूसरे ढंग से, एलोन कौन है? वो एकमेव द्वितीयम, लेकिन वो अनेकों नाम रूपों में अपने को प्रकट कर रहा है। तो साथ ही क्या होता है इसके साथ साथ कि हम हर एक व्यक्ति में, पशु पक्षी क्रीचर्स, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आभास होने लगता है कि इनके इन सब के अंदर ईश्वर विद्यमान है। द प्रेजेंस ऑफ द इटर्नल इन द आर्स, तो दिन प्रतिदिन घड़ी घड़ी क्षण घंटे मिनट इन सब के अंदर वही शाश्वत के कर्ण, शाश्वत की शक्ति, शाश्वत का से जो प्रथम नाद जो ऊर्जा जो स्पंदन होता है वो इन इसमें उतरने लगता है। वाइडनिंग द मॉर्टल माइंड्स हाफ लुक ऑन थिंग्स, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मैंस फोर्स एंड फेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब कैसे ये ब्रिज कर रही है फोर्स ऑफ फेट, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, श्री अरविंद एक एक पंक्ति में इतने रहस्य डाल देते हैं। अब मनुष्य अंधा है, आधा देखता है, अब वहाँ तक कोई बात नहीं है, लेकिन वो समझता है मैं सब जानता हूँ, वो और भी बड़ी कठिनाई है। और भाग्य क्या है? भाग्य है उसका परिचय देता है उन चीज़ों से जिसको वो नहीं जानता है। डिसाइड किया कि अभी सुबह मैं घर से निकलूँगा, सूट बूट पहन के वहाँ जाऊँगा, मेरी मीटिंग है, ये है वो है, मार्ग में कोई मिल जाता है, टेलीफोन पर कोई घटना हो गई है जो अघटन घटना है, और उसकी पूरी गति बदल जाती है, कपकपी आने लगती है, बुखार हो जाता है, कितनी सारी चीजें ना अप्रत्याशित। तो वास्तव में क्या है हम देख नहीं पाए, इसीलिए माँ कहती हैं कि जो एक मूल जो अंतर होता है, साइंस क्या चाहती है? साइंस चाहती है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकूं, प्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन आपकी देखिए प्रेडिक्शन की कैपेसिटी कितनी कम है, आप मेटेरियल लेवल पर कुछ हद तक बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लिविंग बींग्स के अंदर आते हैं तो आप साइंस पूरी अपनी विज्ञान की जोर लगा दे, वो क्या नहीं बता सकेगी कि कब जो डाल पर बैठेगा कि बैठा है कब उड़ेगा और उड़ के किधर जाएगा, ये केवल आप अंतर्भाष से जान सकते हैं उसकी चेतना से आइडेंटिफाई करके। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, और हम लोग कितना सबके इंटेंट के बारे में कहते रहते हैं, और चूंकि हम ये नहीं जानते जो फोर्सेस का प्ले जिसके कारण चीज़ें संसार में हो रही हैं, इसीलिए हम उसको भाग्य कहते हैं। तो भाग्य चांस शब्द की ही तरह पर्याय है इसका कि हम चीजों को नहीं जानते, हमारे अज्ञान का एक दूसरा नाम है। लेकिन जैसे जैसे मन के द्वार खुलते रहते हैं, चक्षु मन के खुलने लगते हैं, और जैसे जैसे उनका विजन एक्सपेंड करता है, तो वैसे वैसे हम उन चीजों को जानने और देखने लगते हैं जो हम अभी अपनी इस समय अज्ञान की अवस्था में नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, तब हम फेट को जान लेते हैं, और फेट को जानने के बाद उसको बदल भी सकते हैं। कुछ दिन पहले यही बात हो रही थी कि माताजी ने कैसे 50 वर्ष पूर्व ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान का 5 भागों में विघटन होगा। अब देखिए फेट, उस समय तो कोई इसको विश्वास ही नहीं करता। उस समय क्या, अगर आप 1990s में भी 2000 में भी ये बात करते तो कोई इसको विश्वास नहीं करता, कहते हाँ ऐसी तो बहुत सारी भविष्यवाणियां आई और चली गई। आज लग रहा है कि यही तो सच है और हर घटना उस तरफ ले जा रही है। तो ब्रिजिंग द फोर गैप बिटवीन मैंस फोर्स एंड फेट, भाग्य की कॉन्क्वेस्ट का एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। और कौन सा आत्मज्ञान? समग्र ज्ञान, जिसमें हम हर चीजों को एक नए प्रकाश में देख लें, हमारी दृष्टि का दायरा बढ़ता जाए। और यहां एक पंक्ति में, मेड होल द फ्रैगमेंट बींग वी आर हियर, अब संसार में क्या चल रहा है कैसे हम जान सकते हैं, हम तभी जान सकते हैं अगर हम संसार की के अंदर जो चेतना की गति हो रही है उसको हम एक होकर के जान लें। एट लास्ट वॉज वन ए फर्म स्पिरिचुअल पॉइस ए कॉन्स्टेंट लॉजिंग इन द इटर्नल्स रेल्म ए सेफ्टी इन द साइलेंस एंड द रे ए सेटलमेंट इन द इम्यूटेबल। अद्भुत पंक्तियां हैं। फर्म स्पिरिचुअल पॉइस, अब वो आसन अडिग हो जाता है, पहले क्या था वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब वो अडिग अवस्था हो जाती है। जब हम अडिग आध्यात्मिक चेतना में अडिग रूप से विद्यमान हो जाते हैं, उसमें हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तब क्या होती है ए कॉन्स्टेंट लॉजिंग इन द इटर्नल्स रेल्म, काल के परे शाश्वत के का संपर्क, शाश्वत का सानिध्य मिल जाता है और वही परमानेंट सिक्योरिटी है। इसीलिए माता जी श्री अरविंद बता रहे हैं ए सेफ्टी इन द साइलेंस एंड द रे, कोई प्रकार की सृष्टि में जो उथल पुथल है वहां नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि वो नाद स्वर के प्रारंभ, सृष्टि के प्रारंभ के पहले का है। तो उस अवस्था में आप पूरी तरह सिक्योर हैं। शिव जी की कहानी में आता है ना, शिव जी बैठे हुए हैं हमेशा ध्यानस्थ हैं और रावण आता है, वो तो पूरा ले जाना चाहता है कैलाश को उठा के शिव जी के साथ, और सब लोग परेशान हो रहे हैं, नंदी जितने गण हैं, सर कुछ हो रहा है, आप कुछ करिए करिए, वो अपना शांत साइलेंस में बैठे हैं। फिर माँ पार्वती कहती हैं देखो कुछ तो देखो क्या हो रहा है, तो देखते मुस्कुराते हैं, पांव का अंगूठा रख देते हैं और पूरा का पूरा भुजाओं पे पर्वत गिर पड़ता है जहाँ से शिव स्तुति का जन्म होता है। तो ये जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही, क्योंकि जो सृष्टि करता है, जिसने सब रचना की है, सभी शक्तियों का, सभी चीज़ों का स्वामी है, तो जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं तो उससे बड़ी सेफ्टी क्या हो सकती है। तो ये सेफ्टी इन द साइलेंस एंड द रे, वह प्रकाश जिससे कुछ छिपा नहीं है, रे ए सेटलमेंट इन द इम्यूटेबल, अक्षर में, अक्षर ब्रह्म में जब हम पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं तो ये चराचर जगत, ये जो सदैव चलायमान है, शर भाव कहा गया, ये जगत हमको प्रभावित नहीं करता है, तो हम उसमें सेटल हो गए। कितना अच्छा है ना, अगर कोई पूछे आजकल आप कहाँ सेटल होने की सोच रहे हैं तो हम ये नहीं कहें कि हम पौंडीचेरी सेटल होना चाह रहे हैं, हम भुवनेश्वर सेटल होना चाह रहे हैं, हम दिल्ली सेटल होना है, हम कहें कि हम भगवान में सेटल होना चाह रहे हैं। कितनी सुंदर बात, सेटलमेंट इन द इम्यूटेबल। अब भगवान में आप सेटल हो गए तो आप जहां भी हैं वही आनंद है, सेटलमेंट इन द इम्यूटेबल। हिज हाइट्स ऑफ बीइंग लिव्ड इन द स्टिल सेल्फ, अब समग्रता की ओर ले जा रहे हैं श्री अरविंद, कि प्रारंभ में क्या होता है कि एक भाग हमारा पूरी तरह उसमें सेटल्ड हो जाता है। कौन सा भाग सेटल होता है, अब आपने देखा होगा कि जब पुराने समय में बस में लोग चढ़ते थे या ट्रेन में, तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट बहुत होते थे, तो आप क्या करते थे, आप एक रुमाल डाल देते थे, है ना, खिड़की से, ताकि आपकी जगह है, या आपका कोई मित्र जाके वहाँ बैठ जाता था और बैठ के बगल में वो एक और कुछ अटैची वटैची रख देता था, कोई भी आता था तो वो कहता था कि ये हमारा मित्र आ रहा है। तो ये क्या हुआ, एक भाग हमारा सेटल्ड हो जाता है। तो ये लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हमको पता है कि ये तो हमारी परमानेंट जगह है, इसको कोई नहीं ले सकता। तो यहां उसका वर्णन है, ए सेटलमेंट इन द इम्यूटेबल, हिज हाइट्स ऑफ बीइंग लिव्ड इन द स्टिल सेल्फ, हिज माइंड कुड रेस्ट ऑन ए सुपरनल ग्राउंड एंड लुक डाउन ऑन द मैजिक एंड द प्ले। अब वो वहां से मन देख रहा है जो हो रही है उथल पुथल, धरती के ऊपर कहीं रोना कलपना हो रहा है, बिलखना हो रहा है, या कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर शांति हो रही है, कहीं मिलन हो रहा है, कहीं बिछुड़ना हो रहा है। इसका बहुत अद्भुत वर्णन है, श्री अरविंद की कविता है इलियन, तो उसमें सियूस और देवताओं ने निर्णय ले लिया है कि अब ये ट्रॉय को ध्वस्त करना है। अब श्री अरविंद वर्णन करते हैं कि ट्रॉय में क्या हो रहा है, कहते हैं माताएं बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, अग्नि जल रही है चूल्हे में, जो पति है वो बाहर जा रहे हो, कह रहे हाँ शाम को मैं आऊँगा, तब हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वो लेकिन वो माइंड देख रहा है उस प्ले के ऊपर, सीयूज देख रहे हैं, कुछ कहते नहीं हैं क्योंकि ये तो निर्णय हो चुका है। तो माइंड उससे, उसके अंदर शोभ नहीं होता, उसके सुख दुख से प्रभावित नहीं हो रहा है, वो उसको देख रहा है और वो समझ रहा है कि क्यों हो रहा है। इसीलिए मैजिक एंड द प्ले। मैजिक क्या होता है कि जहाँ हम कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम नहीं जानते थे, कल्पना नहीं कर रहे थे, और वो चीज़ हो जाती है अचानक, हम कहते हैं ना मैजिक, इसकी तो हमने संभावनी नहीं देखी थी। तो मैजिक एंड द प्ले, ये एक दृष्टि है जिससे हम संसार को देखने लगते हैं। वेयर द गॉड चाइल्ड लाइज ऑन द लैप ऑफ नाइट एंड डॉन एंड द एवरलास्टिंग पुट्स ऑन टाइम्स डिस्गाइज। गॉड चाइल्ड कौन है? चैत्य सत्ता, साइकिक बीइंग, और उसकी दो माताएं होती हैं। देखिए जगह जगह ये कहानी आती है ना, दो माताएं। तो एक माता होती है जो दैत्य माता मतलब नाइट, और एक होता है दिन। ये सीधा वैदिक फ्रेज है, वैदिक फ्रेज में ऋग्वेद में लिखा गया है कि वो शिशु जिसको दिन और रात दोनों माताएं पोषित करती हैं। रात कैसे पोषित करती है? जब अंधकार आता है जीवन में तो आपके अंदर शक्ति अर्जन होती है। देखिए जब पांडवों के जीवन में अंधकार आया तो श्री कृष्ण ने क्या सलाह दी? ये नहीं कि तुम रो कल्पो बिखरो गुस्से में, अपनी ऊर्जा को शेयर करो, वो कहते हैं अर्जुन को शक्ति का अर्जन करो। और जब दिन आता है, दिन आता है तो आप भगवान के साथ हो, आनंद है, शांति है। तो नाइट एंड डॉन एंड द एवर लास्टिंग पुट्स ऑन टाइम्स डिस्गाइज। जो होना है वो निश्चित हो चुका है, लेकिन वो काल की गति में टाइम्स डिस्गाइज क्या होने वाला है। डिस्गाइज क्यों कह रहे हैं? कल क्या होने वाला है नहीं मालूम। आजकल लोग बहुत देख रहे हैं पॉडकास्ट, भविष्यवाणी से लेकर जितने प्रेडिक्शन, कल क्या होगा, आज क्या होगा, आज इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कल क्या कर रही है इसके। अरे भाई वो ही है सो ही जो राम रचि राखा, वही होगा जिसका निर्णय ले लिया गया है। माता जी ने इसको 50 साल पहले बता दिया है कैसे होगा, किस रूट से होगा, प्रतीक्षा करें। टू द स्टिल हाइट्स एंड टू द ट्रबल्ड डेप्थ्स His equal spirit gave its vast ascent। तो एक और उस ऊंचाई को भी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अशुपति ने उसी ऊंचाई को अपना घर बना के कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। Troubled depths, नीचे जो युद्ध चल रहा है उस विभीषिका में भी भगवान का एक काम हो रहा है। तो equal ascent, श्री कृष्ण से कोई पूछे कि आपने क्यों महाभारत करवा दी, पूछा भी लोगों ने, धृतराष्ट्र ने उनको ब्लेम किया, गांधारी ने ब्लेम किया, अभी तक लोग ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण तो मौन रहे, मुस्कुरा दिए, श्राप ले लिया। लेकिन श्री अरविंद इसका रहस्य बताते हैं। एक लाइन है उनकी बंगला राइटिंग में, कहते हैं श्री कृष्णा थ्रू द महाभारत सेव्ड इंडिया। सोचिए महाभारत नहीं होता तो क्या होता? युधिष्ठिर तो बेचारे धर्मनिष्ठ थे, वो तो बार बार कहते कि भाई हमारी तो ट्रीटी हो गई है, शिमला में हो गई है, लियाकत पैक्ट, हम तो ऑनर करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, यही बोलते ना। पांडवों की तो यही गति थी, चलो ले लो कोई बात नहीं, खांडप्रस्थ दे दिया चलेगा, लूट लिया चलेगा। तो क्या होता? दुर्योधन का राज्य होता। दुर्योधन का राज्य होता तो क्या होता, हम कल्पना कर सकते हैं। भारत में अब तक तो अधर्म कितना व्याप्त हो गया होता। तो ट्रबल डेप्थ, क्यों कई बार ये चीज़ें इस प्रकार से होती हैं? क्योंकि भगवान की जो बात है, जो उनकी विल है, उनका जो संकल्प है, वही तो अल्टीमेटली फुलफिल होना है। हम अगर नहीं करेंगे तो हमको पुश कर दिया जाएगा उस अवस्था में, ताकि हम वही कृत्य करें जो अंत में भगवान के संकल्प को पूरा करेगा। ए पॉइज्ड सेरेनिटी ऑफ ट्रैंक्विल स्ट्रेंथ, ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं श्री अरविंद को बस पिक्चराइज कर लीजिए, श्री अरविंद का दर्शन है। श्री अरविंद के बारे में लोग कहते थे कि उनको देख के ऐसा लगता था कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी बर्स्ट होने वाला है कोई उनको कहे तो अनटच्ड अनमूव्ड बैठे रहेंगे, मानो कोई उससे प्रभाव नहीं होने वाला है। ये अलीपुर जेल की बात लोग बताते हैं कि इस तरह से श्री अरविंद जब ध्यानस्थ होते थे। तो अब ये चार पंक्तियां श्री अरविंद का दर्शन हम लोग करें। टू द स्टिल हाइट्स एंड टू द ट्रबल डेप्थ्स. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है और किसी ने उनसे पूछा, काफी समय तक वो जानते थे ये युद्ध इसकी किस दिशा में जाना है. एक दिन श्री अरविंद अचानक कहते हैं, जब वो कहते हैं कि हिटलर यहां तक पहुंच गया है, श्री अरविंद कहते हैं, वी शैल सी. सोचिए, रिवर्सल शुरू होता है, वी शैल सी. तो स्टिल हाइट्स एंड द ट्रबल डेप्थ्स. His equal spirit gave its vast ascent a poised serenity of tranquil strength. एक शक्ति जो चाहे तो एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड को क्रैश कर दे, वो शक्ति को धारण किए हुए, a wide, unshaken look on time's unrest. नोआ खाली की बात है. अब ये मैं एक इसका बैकग्राउंड में जाके कह रहा हूँ, जो मेरी अपनी इंट्यूशन है. नोआखाली में जब इंसिडेंस होता है, जहाँ पे हिंदुओं को पूरा डेमोग्राफी चेंज करने के लिए मुसलमानों ने निर्णय लिया था और वहाँ के मेयर ने, कमिश्नर ने फ्री हैंड दे दिया था, 3 दिन तुम लोगों को जो करना है करो, ताकि वो डेमोग्राफी चेंज हो जाए और कलकत्ता चला जाए ईस्ट बंगाल में, मतलब उस समय जो बांग्लादेश ने, बांग्लादेश बाद में बना ईस्ट पाकिस्तान में. तो उस समय श्री अरविंद से किसी ने कहा, तो उन्होंने कह के बताया, गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आप हृदय में अहिंसा को धारण करो. आप उन पर कोई, उन्हें रोका था, एक्चुअली अनशन किया था कि अगर हिंदू आक्रमण करेंगे वापस तो मैं आजीवन, मतलब एक आमरण अनशन करूँगा, और इस कारण लोगों को रुकना पड़ा था. Yes, it's a fact कि he had, मतलब कट जाओ लेकिन आप लाठी ना उठाओ. श्री अरविंद से किसी ने कहा, श्री अरविंद कहते हैं, हाउ डज ही एक्सपेक्ट टू, उसमें 2-3 उनके बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने कोई इमोशनल स्पीच नहीं दी. अब देखिए क्या हुआ. अब कहानी जो बन रही है फिल्म दिल्ली फाइल्स, इसी पर है, बंगाल चैप्टर. उसमें एक व्यक्ति गोपाल पाठा नाम का, वो भी कसाई था, हिंदू था, उसने सारा गैल्वेनाइज किया और एक दिन के अंदर सब कुछ बदल गया. कैसे किया? उसकी शक्ति से तो नहीं ये संभव है. किसने उसके अंदर ये ऊर्जा दी? किसने उसके अंदर ये संकल्प जगाया? किसने उसके बुचर नाइफ को माँ दुर्गा का खड़क बना दिया? और कैसे उसने सबको ऑर्गेनाइज करके ये चीज़ की? अब श्री अरविंद ने बाहर से कुछ नहीं कहा, माता जी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये जानते थे. उन्होंने केवल गांधी जी के बात को रिफ्यूट किया कि ऐसे तो ये नहीं हो, इट कैन नॉट बी डन दिस वे, जैसे गांधी जी बता रहे हैं. पर क्या करना ये उन्होंने कुछ नहीं बताया. मेरे इंट्यूटिवली मैं कह रहा हूं, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है. आई एम 200% कन्विंस्ड कि उस गोपाल के अंदर इस मदन गोपाल की शक्ति थी जो प्रवेश कर गई थी. ट्रैंक्विल स्ट्रेंथ उनके लिए एक छोटी सी चीज थी, जैसे शिवजी एक अंगूठा पांव का नीचे रखते हैं और रावण क्रैश कर जाता है. वो रियली अभूतपूर्व घटना है, ये फिल्म में नहीं दिखा पाएंगे वो लोग, कि एक दिन के अंदर ऐसा वो गोपाल पाठा रिवर्स करता है. इट्स 72 घंटे की कहानी है ये. एक दिन हिंदू इतने कट जाते हैं कि निर्बल होके वो भाग रहे हैं, अगले दिन रिवर्सल ऐसा होता है, और ऐसा होता है कि मुस्लिम्स अपील करते हैं कि नहीं नहीं, इसको आप रुकवा दीजिए, ले जाओ कलकत्ते को. ये कैसे संभव है? कोई एक मनुष्य नहीं कर सकता है. तो ट्रैंक्विल स्ट्रेंथ, श्री अरविंद जब द्वितीय विश्वयुद्ध में, और अभी भी वो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं. A wide, unshaken look on time's unrest faced all experience with unaltered peace. Indifferent to the sorrow and delight, untempted by the marvel and the call, immobile it beheld the flux of things, calm and apart, supported all that is. अब ये क्या बात हुई? भगवान सबको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हर चीज कोलैप्स कर जाए, वो तो सृष्टि का एक ताना बाना है। अब देखिए इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषय बाह्य दोषा। सूर्य क्या करता है? आप सूर्य को ऐसे बोल सकते हैं, भैया तुम केवल हम लोगों को जो अच्छे लोग हैं ना, और हम ही अच्छे लोग होते हैं, हर व्यक्ति समझता है मैं अच्छा लोग, मेरे मोहल्ले में मेरे परिवार में आप प्रकाश देना, लेकिन वो जो है ना बदमाश, उसको बिल्कुल नहीं देना प्रकाश। सूर्य क्या कहेगा? मुस्कुराएगा, कहेगा हट पर ही। अब क्यों भगवान सबको सपोर्ट कर रहे हैं? यहां पर कहते हैं एवरीबडी गेट्स हिज चांस, हर किसी को शक्ति, हर किसी को ज्ञान दिया है, करो दुरुपयोग, यू विल रीच ए पॉइंट वेयर इट विल कोलैप्स। मां से किसी ने पूछा कि असुर को क्यों जीतने देते हैं भगवान, तो मां कहती है ये उसको नीचे लेके कोलैप्स करने का सबसे शीघ्रतम मार्ग है। आप खुद देख लीजिए पहलगांव का इंसिडेंस हुआ है। वास्तव में अगर आप देखें तो कौन मूर्ख राज्य होगा, राष्ट्र होगा जो कटोरा लेके खड़ा हुआ है सड़क पर, वो इस तरह का कृत्य करेगा एक ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध जहां उसको पता है वर्ल्ड कंडीशंस आर फुल्ली विद इंडिया। ट्रंप वहां बैठा हुआ है, यहां पर मतलब ऐसे समय में कोई महामूर्ख होगा जो ऐसा कृत्य करेगा? ये तो मतलब लिटरली कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, यहां तो आ बैल नहीं, आ सिंह मुझे खा खा ले जा पियो के, ले जा बलूचिस्तान, लिटरली इट इज। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये समस्या है, वो समस्या है, शायद कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि अच्छी ये भारत ले लेगा तो बेटर लुक आफ्टर करेगा हमारी, पर वो एक अलग बात है, भारत इन सबको लेगा नहीं, स्वतंत्र करके छोड़ेगा, क्योंकि वो फिर इट विल लीड टू कॉन्फेडरेशन, वो आगे का की बात है, वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहां पर है अनटेम्प्टेड बाई द मार्वेल एंड द कॉल, हम लोग कैसे अरे अरे ये चीज हुई है चलो देखने चलते हैं, देखने चलते हैं, इसने बुलाया है, उसने बुलाया है, आज इससे मिलना है, आज हमको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है विशेष पुरस्कार के लिए। अब देखिए वो एक मिनट का आपको सब तो भगवान का किया हुआ है, लेकिन कितना लोग प्रसन्न होते हैं उस पर, फोटो लगा के रखते हैं कई बार कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो पता है इसका उत्तर क्या होना चाहिए? आप अपने घर में बैकग्राउंड में समाधि का चित्र बना दीजिए, बोलिए हम तो इनसे मिले, कौन है ये, नहीं दिखता ना, यही अंतर है, हम तो इनसे मिले। देखिए इस भगवान से मिलने के बाद कौन सी ऐसी चीज है या कौन है जिससे मिलके आपको लगेगा कि हाँ कोई बड़ा विशेष कार्य हो रहा है? तो यहां पर वो अंश कॉल, मार्वेल एंड द कॉल, इमोबाइल इट बिहेल्ड द फ्लक्स ऑफ थिंग्स काम एंड अपार्ट सपोर्टेड ऑल दैट इज स्पिरिट्स स्टिलनेस हेल्प द टॉयलिंग वर्ल्ड। ये पूरी ऊर्जाओं का बैलेंस कर रहे हैं भगवान विष्णु की तरह, स्टिलनेस, सो रहे हैं पर सोचेगा नहीं कि सो रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। कैसे चलाते हैं? स्पिरिट की स्टिलनेस से। अब अगर भगवान कोई एक साइड अपना पांव रख दें, हाथ उंगली रख दें, तो वो पूरा बैलेंस, लेकिन उससे क्या होगा, इवोल्यूशन की प्रोसेस समाप्त हो जाएगी। ये कुछ इस तरह की बात है कि किसी व्यक्ति को आपने खूब सारा पैसा दे दिया और कहा जाए तो मौज कर, मैंने तुझे सुरक्षित कर दिया, वो क्या करेगा उस पैसे का? दुरुपयोग करेगा। जब वो पैसा अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से लाएगा, जिसमें उसको टॉइल होगी, उसको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो उसका मूल्य जानेगा। ये एक कहने की वो चीज है। तो उसी प्रकार से भगवान ऐसे नहीं कि हर चीज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पर वो देख रहे हैं। एक पंक्ति है सावित्री में, बाद में आती है, बट देर इज ए गार्जियन पावर, देर आर हैंड्स दैट सेव, काम आईज डिवाइन रिगार्ड द ह्यूमन सीन। भगवान देख रहे हैं, कोई हमको चिंता परेशानी की बात नहीं है। इंस्पायर्ड बाई साइलेंस एंड द क्लोज्ड आई साइट, करिए विष्णु भगवान का भी दर्शन है, देखिए इंस्पायर्ड। अब ये कौन सा साइलेंस है? साइलेंस कैसे इंस्पायर कर रहा है? वे चीजें जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुई, अनभिव्यक्त के गर्भ में जो पड़ा हुआ है वो साइलेंस है, उसमें अभी स्पंदन नहीं आया, नाद नहीं आया, यानी उसने सृष्ट होना प्रारंभ नहीं किया। तो उस साइलेंस के अंदर कोई चीज आपको इंस्पायर पुश करती है, ये आता है ना ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कि वो तो नॉन बीइंग अपना, वो था नहीं था कुछ भी नहीं कह सकते, ना दिन था ना रात था, ना प्रकाश था ना अंधकार था। तो क्या होता है उसमें, एक स्टर उठता है, कौन है, डिवाइन मदर। अब फिर वो सृष्टि प्रारंभ होती है। तो इंस्पायर्ड बाय द साइलेंस एंड द क्लोज्ड आई साइट हिज फोर्स कुड वर्क विद ए न्यू ल्यूमिनस आर्ट ऑन द क्रूड मटेरियल फ्रॉम विच ऑल इज मेड एंड द रिफ्यूजल ऑफ इनर्शियाज मास एंड द ग्रे फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड्स इग्नोरेंस एंड नेसियंट मैटर एंड द ह्यूज एरर ऑफ लाइफ। आंखें मुंदी है, सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये शेरविंद की जो पोयम है महात्मा, उसमें ये बात आती है, महात्मा नहीं राक्षसा, उसमें सारे ऋषिगण जाते हैं श्री कृष्ण के पास, कहते हैं कुछ करिए, रावण का क्या करना है, मुस्कुराते हैं, सबको यज्ञ भंग कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो वो कहते हैं कि बोलो तुम लोग क्या करूं। तो सब ऋषिगण कहते हैं अंत होना चाहिए इसका, स्वाभाविक है। कहते हैं समस्या ये है कि उसने सत्य को पकड़ा हुआ है, रावण ने सत्य को पकड़ा हुआ है। कहते हैं उसने सत्य के आधे सत्य को पकड़ा है। क्या सत्य है, आम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड। बात तो सही है, पकड़ा हुआ है उसने। तो कहते हैं हाँ, लेकिन कहते हैं लेकिन वो आधा सत्य उसका जो है वो नहीं जानता कि एवरीथिंग इज गॉड, तो उसका विनाश तो होगा, कब होगा, कब होगा। तो कहते हैं कि देखो, पशु से राक्षस और राक्षस से असुर के एवोल्यूशन में एक एओन लगा है, कल्प लगा है। तो पहले असुर तत्व को पूरी तरह धरती पर जब स्थापित हो जाएगा, तब असुर से एक मनुष्य, मनुष्य से देव मानव, तब यह संभव है। पशु से सीधा मनुष्यत्व नहीं प्रकट हो सकता। अब आप इसको देखिए, कुछ सेंचुरीज पीछे एम्पायर्स फॉर्म हो रहे थे, भगवान नहीं थे, बिल्कुल थे, स्वयं श्री अरविंद ऑगस्टस सीजर के रूप में थे। ऑगस्टस सीजर का एम्पायर कहाँ से कहाँ था, ग्रीस उसके भी उधर थोड़ा, इजिप्ट तक था, और कहते हैं कि सबसे सुंदर एम्पायर था। भारतवर्ष में भी थे एम्पायर्स, अशोक का, कनिष्क का एम्पायर्स ऐसे थे भारतवर्ष में, जो अफगानिस्तान तक गए थे। तो ये जो कश्मीर के राजा थे ललितादित्य, इस पर अभी तो बहुत वो भी आया कि वो किसी ने कहा वक्फ की संपत्ति पर, कि अंपायर से बात याद आ रही कि वक्फ, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसको कॉन्कर किया था। तो किसी ने उत्तर दिया, हमारे वामन अवतार ने तो 3 डग में पूरी पृथ्वी आकाश पाताल नाप लिया था, तो वो तो तब से हमारा है। अब आपके पुरखों का क्या कहें, हमारे तो वामन अवतार ने हम रिक्लेम करेंगे कि भाई वामन अवतार ने ही सब ले लिया था ना, हमारी तो किताबों में लिखा है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास, पुराणों में इसका वर्णन है, और हम सब इसको मानते आए हैं, तो हम तो फिर सारी धरती क्लेम कर ले। कहने का अर्थ ये कि वो देखते हैं ये एम्पायर्स। अब शेरविंद इसको बताते हैं, जब पहली बार मैंने पढ़ा था तो मेरी आंखें जो कहते हैं खुली की खुली रह गई, कि एम्पायर जब बनते थे ना कितना विनाश होता। मुगल एम्पायर इसको भी आप देखिए, ब्रिटिश एम्पायर, तो वो क्या कहते हैं, ये एक अवसर दिया गया था पृथ्वी को तैयार होने के लिए, अल्टीमेटली वर्ल्ड यूनिटी के लिए। तो वर्ल्ड यूनिटी का जो अज्ञान में प्रयास था वो एम्पायर्स के थ्रू था। तो इससे क्या लाभ हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि मेलजोल बढ़ा। भारत में एंग्लो इंडियन बोल के कुछ लोग आए, कुछ उर्दू भाषा गए, कुछ वहां पे ले गए हमारी सभ्यता को। अमेरिका में लोगों ने गीता पढ़ना प्रारंभ किया। अब क्या हुआ, ये पहला वो था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है अमेरिकन वेद, किसे लिखी, कैसे ये जो परस्पर संपर्क हुआ, बड़ा पेनफुल है, लेकिन इसके कारण संसार एक दूसरे से परिचित हुआ। जैसे आप होते हैं ना, पड़ोसी कौन है आपके, जानना चाहते हैं, एक नए मोहल्ले में जाते हैं, तो आप पड़ोसी के पास चले गए, अब पड़ोसी ने आपको देखा, डील डॉल देखा तो घबरा गया, या आप घबरा गए, लेकिन आप पास में रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, फिर कॉमन समस्याएं होंगी जिनमें आप एकजुट होंगे। तो उसी प्रकार की चीज भगवान ट्रबल्ड डेप्थ्स को भी अपनी स्वीकृति देते हैं, टर्मोइल को जो उथल पुथल हो रही है। और इसी कारण चूंकि ये संसार आसानी से नहीं मानता है, इस कारण उसको इसके रौंदा जाता है भगवान बलराम के हल के नीचे। आप देखिए एक समय तक भारतवर्ष के अंदर बहुत सेक्युलरेट था इंडिया, पढ़ें अगर भारत का इतिहास तो जब बर्बरताएं फैली थी बाहर, भारतवर्ष में तो कितना अद्भुत वेदों का गान हो रहा है, उन्नत सभ्यता है, ट्रॉय के साथ भी यही था। तो क्यों ये सब होता है? क्योंकि भाई आपको मिलना है, ये इस ज्ञान को जाना है, और इसलिए ये जब प्रारंभिक कांटेक्ट होता है तो रेसलिंग कंपटीशन होता है, तब इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, बाद में ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बन जाता है। तो इसी की बात हो रही है। एज ए स्कल्पचर चिजल सेडेटी आउट ऑफ स्टोन ही स्लोली चिप्ड ऑफ द डार्क एनवेलप। अरे वाह, ऐसे माता जी का काम ऐसे ही है। हम लोगों को पहले पता नहीं होता कि क्या क्या अंधकार में है, हम तो बहुत अच्छे हैं, संसार में सबसे अच्छे हैं, भगवान थोड़ा चिपिंग करते हैं, कहते हैं अरे हमारे अंदर ये गंदा गंदी चीज कहाँ से आ गई, रुक जाओ। फिर धीरे धीरे चिपिंग करते करते देवमूर्ति प्रकट होती है, अच्छा ये बना रहे थे आप, तो कहते हैं हाँ। इसीलिए श्रद्धा समर्पण इसलिए आवश्यक है। तो चिपिंग की जो प्रोसेस है, जैसे एक स्कल्पचर मूर्ति को गढ़ता है हार्ड मटेरियल रॉक के अंदर से, उसी प्रकार से भगवान हमको गढ़ रहे हैं। ये अशुपति देख रहे हैं, उनको ये चीज स्पष्ट हो जा रही है कि अच्छा किसी को बहुत पीड़ा से कोई गुजरता है तो लोग कहते हैं ना भगवान आप करते क्यों नहीं हो कुछ, हो रहा था ना ग्वाल बाल, इतना राम जी आए, कितना कुछ हो रहा था उस समय, करते क्यों नहीं हो, तो भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। पांडवों के साथ क्यों नहीं कुछ कर दिया उन्होंने अचानक, तैयार कर रहे हैं, चिपिंग चल रही है ताकि आपके अंदर से, और जितना बड़ा आपका कर्म होने वाला है उतनी अधिक आपकी चिपिंग होगी, जितनी सुंदर देव प्रतिमा गढ़ने वाली है उतना अधिक। ये जगह जगह पर सावित्री में आता है, इस बात को अशुपति देख रहे हैं कि कैसे भगवान एक स्कल्पचर की भांति, एक शिल्पकार की भांति हमारे जो बाहरी जो जड़ तत्व से जुड़े हुए जो हमारी जड़ताएं हैं, अंधताएं हैं, मूर्खताएं हैं, उसको धीरे धीरे हटाते हैं और हट के उसके अंदर से प्रकाश निकलता है। भगवान के तरीके बड़े अनोखे हैं। देखिए एक व्यक्ति को लगता है नहीं मैं जो समझता हूँ बिल्कुल सही है, तो पहले उसकी वाइफ समझाएगी कि नहीं तुम गलत हो सकते हो, नहीं सुनेगा, फिर बच्चा आके बोलेगा। अब क्या होता है ना, आप दुविधा में आ गए, बच्चा बोल रहा है तो आप सोचोगे कि हाँ शायद देर इज सम ट्रूथ। अच्छा आपने कहा कि नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, ये सब पचड़े में नहीं, कोई बात नहीं, आपका पड़ोसी आपको कहेगा, आपका मित्र कहे, कोई ना कोई तो कहेगा, और यदि कोई नहीं कह रहा है तो आपको अभी भगवान ने अंधकार में रहने दिया है। तो ये देखिए कैसे चिपिंग होती है, पेनफुल होती है, दुख पहुंचता है, लेकिन अगर आप इसको सही ढंग से लें तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस का एक माध्यम हो सकता है। ही ये यहां ही कौन है, भगवान, लेकिन अशुपति देख रहे हैं भगवान की लीला को, उसको समझ रहे हैं क्या लीला है। एज ए स्कल्पचर चिजल से डेटी आउट ऑफ स्टोन, पत्थर से जैसे देव मूर्ति गढ़ी जाती है। ही स्लोली चिप्ड ऑफ द डार्क एनवेलप, लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ नेचर्स इग्नोरेंस, द इल्यूजन एंड मिस्ट्री ऑफ द इनकॉन्शियंट। सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है, मानो पता नहीं कौन सा कोई बहुत बड़ा, ये बात कभी समझ नहीं आती कि क्यों नहीं बदलना चाहता है। इतनी सारी समस्याएं कठिनाई हैं, अज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन बदलना नहीं चाहता है। तो भगवान फिर क्या कहते हैं, कभी कभी वो कहते हैं अच्छा तू तो बदलेगा नहीं, पर मैं तो बदल के छोड़ूंगा। खासकर जब आप हैंड ओवर कर देते हो तब पता नहीं होता है। लोग अक्सर कहते हैं आश्रम के बारे में, डिवोटी कोई भी मुड़ता है सीरियस डिसीजन लेके, सही कहते हैं कि आप, अरे वाह आप, मैं डिवाइन लाइफ जीऊंगा, दिव्य जीवन की ओर, कितना अद्भुत है, माता जी का यंत्र बनूंगा। तो माता जी देखती हैं ठोक बजा के, अच्छा ये तो लोहा है पर यंत्र बन सकता है, तो क्या करेंगी नेक्स्ट, आपको भट्टी के अंदर डाल देंगी। बोले ये क्या कर दिया माँ, ये तो जल रहा है ये, हाँ तुमने कहा था ना। और अगर आप थोड़े सॉफ्ट वो थोड़ा अलग मटेरियल है तो वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन तो बहुत प्रॉब्लम है। बंद कर दी है, आप स्टक हो किसी व्यक्ति के साथ या किसी डिपार्टमेंट के साथ, आप नहीं निकल सकते हो, आप करते रहो। आप बोलो भगवान कब खोलोगे दरवाजा, वो तो अपने टाइम पर खुलेगा, जब महल पूरा है ना, ये भगवान की इसको, ये वॉशिंग मशीन है। अब आप बोलोगे नहीं वॉशिंग मशीन में नहीं जाऊंगा, आप बहुत कॉन्शियस हो गए, तो भगवान कहे अच्छा मैं तुझे खुद अपने आप साफ करूं, हाँ उठाएंगे और धोबी पछाड़ योग होगा, उठा उठा के पटकेंगे ताकि आपका मैल निकले। तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो उसका क्या उपाय है, श्रद्धा और समर्पण। स्कल्पचर हैं, शिल्पी हैं, गढ़ रहे हैं हमारे अंदर से देव मूर्ति, कौन से हम कोई बड़े महान व्यक्ति हैं कि हमको आगे कुछ नहीं बनना है, भगवान बनना है भाई, बहुत दूर का रास्ता है। तो यहां पर उसकी बात हो रही है। द इल्यूजन एंड मिस्ट्री ऑफ द इनकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट क्या बताता है, जड़ता में बांध देता है, हम जैसे हैं वैसे हैं। एक गाना भी था ना, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे आप ऐसे ही एक्सेप्ट करिए जैसा मैं हूं। भैया मैं तो कर लूंगा लेकिन संसार है। तो ये जो चीज है ना, ये क्या करता है इनकॉन्शियंट, आपको सरफेस पर्सनैलिटी को हम समझते हैं कि यही सब कुछ है और उसी को हम पूरे संसार में स्टैम्प करना चाहते हैं, बच्चों के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, सब पर, कि मैं सही हूं। सारा संसार कह रहा है आप गलत हो सर, आप रॉन्ग साइड ऑफ लेन में आ रहे हो, आप गलत लाइन में चल रहे हो। नहीं, बाकी सारे गलत लेन में चल रहे हैं, मैं सही हूं। तो ये है इस कारण भगवान की जो मिस्ट्री, इसलिए कहते हैं इल्यूजन। पता है आप गलत हो लेकिन आपको नहीं पता है, तो इल्यूजन एंड मिस्ट्री ऑफ इनकॉन्शियंस ऑफ द इनकॉन्शियंट, इन हूज ब्लैक पॉल द इटर्नल रैप्स हिज हेड दैट ही मे एक्ट अननोन इन कॉस्मिक टाइम। अब आप गलत लेन में चल रहे हो, क्या हुआ? एक फिल्म का सीन है इससे में, आप सारी कार सामने से आ रही, सारी गाड़ियां आपको को सब बोल रहे हैं गलत दिशा में हो, आप नहीं समझ रहे हो। अब क्या हुआ, एक गाड़ी आई साइड से आपसे टकरा गई, आप पूरा टर्न हो गए 180 degrees, नाउ यू आर बैक ऑन ट्रैक। ऐसा भी करते हैं भगवान, इन हूज ब्लैक पॉल, काले कपड़े में छिपे हुए हो, भगवान आपको सही रास्ते पर ला रहे हैं। और अगर इस तरह से हम देखें तो हर चीज जीवन में आपको, हमें प्रगति का मार्ग खोल देती है। ए स्प्लेंडर ऑफ सेल्फ क्रिएशन फ्रॉम द पीक्स, ए ट्रांसफिगरेशन इन द मिस्टिक डेप्थ्स, ए हैप्पियर कॉस्मिक वर्किंग कुड बिगिन एंड फैशन द वर्ल्ड शेप इन हिम एंड न्यू। अब अशुपति अनुभव कर रहे हैं भगवान के ओरिजिनल प्लान को, क्या है स्प्लेंडर ऑन द पीक्स, और उस परिवर्तन को पहले अपनी डेप्थ में, इसको माता जी बताती रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो देख रहे हैं अंदर में। संसार कहेगा कि आप तो बदल नहीं रहे, कुछ नहीं बदला आप में, आप कैसे योग कर रहे हो, कुछ तो नहीं बदला। आपको पता है कि आप बदल रहे हो, कहां बदल रहे हो, मिस्टिक ट्रांसफिगरेशन इन द डेप्थ्स। लेकिन जहां बदल रहे हो केवल आप उससे परिचित हो और कोई नहीं। ए हैप्पियर कॉस्मिक वर्किंग कुड बिगिन एंड फैशन द वर्ल्ड शेप इन हिम एन्यू, और उससे पूरा संसार अब आप एक नई दृष्टि में देखने लगते हो। वो दृष्टि क्या है, पेज 37 पहली लाइन, गॉड फाउंड इन नेचर नेचर फुलफिल्ड इन गॉड, विभक्ति समाप्त हो जाती है, भगवान का खेल सब जगह दिखाई देने लगता है, नेचर जो छिपा रही थी भगवान को उसके हर खेल में आप देखने लगते हो, हे नाग देवता, हे गौ माता, हे पृथ्वी देव माता, हे सूर्य भगवान, हे नदी, सबके अंदर वो जो छिपा है वो अपने आप को प्रकट करने लगता है. गॉड फाउंड इन नेचर. शरोभाव पर्वत वो भी पूजनीय हो जाता है, हर चीज, क्योंकि गॉड फाउंड इन नेचर, नेचर फुलफिल्ड इन गॉड. प्रकृति की किसी भी चीज को हम उसको पूर्णता से नहीं समझ सकते जब तक हम उसको भगवान से नहीं जोड़ते. तो नेचर फुलफिल्ड इन गॉड, यही है समग्र माम. अब ये सारी जो चीजें हैं अशुपति के अंदर घटित हो रही हैं, वो अपने अंदर इसको अनुभव कर रहे हैं. ऑलरेडी इन हिम वाज सीन दैट टास्क ऑफ पावर. अब उनकी दृष्टि संसार को ऐसे देख रही है. लाइफ मेड इट्स होम ऑन द हाई टॉप्स ऑफ सेल्फ. हिज सोल माइंड हार्ट बिकेम ए सिंगल सन. यही रूपांतरण की प्रोसेस. पहले क्या होता है, माइंड, हायर माइंड, हृदय, ये चेंज हो जाते हैं. आपके हृदय की गहराई में आप के अंदर केवल भगवान के लिए, माँ के लिए प्रेम है और आपके मन प्रकाशवान हो गया. लेकिन जीवन पैशंस जो बार बार तूफान की तरह ऊपर उठेंगे नहीं, वो नहीं बदले. तो यहाँ उसकी बात हो रही है. ओनली लाइफ्स लोअर रीचेस रिमेंड डिम. यानी कि एक साथ रूपांतरण हो गया, मन प्रकाश युक्त हो गया, हृदय की गहराई में पूरी तरह माँ के लिए प्रेम है, लेकिन बाहरी चेतना जो पूरी तरह निश्चेतना से, लोअर वाइटल से, जड़ तत्व से जुड़ी हुई है, वो परिवर्तित नहीं है, वहां पर प्रकाश अभी नहीं पहुंचा. बट देयर टू इन द अनसर्टेन शेडो ऑफ लाइफ देयर वॉज ए लेबर एंड ए फायरी ब्रेथ. द एम्बिग्वस काउल्ड सेलेस्टियल प्यूजा वर्कड वॉच्ड बाय द इनर विटनेसेस मूवलेस पीस. किसी को बाहर नहीं समझ आ रहा है कि आप बार बार क्यों गिर रहे हो, क्यों उठ रहे हो, लेकिन अंदर में जो जो विटनेस है, साक्षी, वो देख रहा है कि धीरे 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 इसके अंदर में रसगुल्ले का जो स्वाद है वो धीरे धीरे ये समझ रहा है, समझ गया है कि ये विषाक्त है और अब ये इसको बाहर निकाल रहा है. वो भगवान जानते हैं लेकिन बाहर से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है. तो वहां पर भी एक फायरी वर्किंग हो रही है. और क्या शब्द यूज कर रहे हैं श्री अरविंद, अनसर्टेन शेडो ऑफ लाइफ. देयर वॉज ए लेबर एंड ए फायरी ब्रेथ. एक लेबर चल रहा है, बाहर से देखने से ऐसा लगता है उसको फिर गुस्सा आ गया. आपको मालूम नहीं है उसके अंदर क्या हो रही है. शायद अब वो पीड़ित हो रहा है कि मेरे अंदर फिर से क्रोध क्यों आया. आपको बाहर से नहीं पता चलेगा. और मैंने लोगों को बदलते देखा है इस प्रकार. उसके अंदर में कोई चीज शुरू हो गई है, लेबर हो रहा है, अंदर में श्रम हो रहा है और वो बड़ा धीरे धीरे वो श्रम और अधिक तीव्र होने लगता है. और The ambiguous cowled celestial puja worked. भगवान है लेकिन कैसे काम कर रहे हैं. देखिए क्या अद्भुत लाइन है शेरविंद. Cowled puja. Cowled मतलब छिपे हुए, खुल के नहीं काम कर रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि अरे भगवान आप तो omnipotent हो, तो आपको तो झटके से कर देना चाहिए. नहीं, कुछ कारण है कि वो धीरे 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 धीमी आंच पर रोस्ट होते हैं हम, ताकि अच्छी चपाती बन, सब तरफ से सिक जाए. तो वो पूरा काम ऐसे चलता है, काउल्ड प्यूजा. ऐसा लगता है कि अरे भगवान आपको हमने ऑफर किया था, फिर ये कैसे विफल हुआ. हजार बार भी हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर उतना ही बारीक काम करना है, तब तक जब तक आपकी एक एक नर्व फाइबर ट्विच नहीं करे, क्रोध का उसमें एक अंश नहीं आए, जब तक कि भय पूरी तरह निचोड़ करके बाहर ना हो जाए. तो ना गन्ने का जूस बना रहे भगवान पहले मशीन में डालते हैं. अब हुआ है कभी जब बहुत धूप हो, आप अधीर हो रहे हो, अरे भैया दे दो, वो लेकिन नहीं देगा आपको, वो फिर उसको मोड़ के डाल रहा है, फिर चला अब दे देगा, नहीं फिर मोड़ रहा है, लास्ट में वो आप कहते हैं क्या दे दो मैं पी लूंगा, नहीं आपकी बात नहीं है, उसको अपने गन्ने को पूरा निचोड़ना है, तो वो धीरे धीरे होगा ना, एक बार में नहीं निचोड़ता है। तो हम सब उस गन्ने की तरह हैं जो बड़ा कठोर है, चबाया नहीं जा सकता, लेकिन भगवान के रस से भरे हैं। तो वो जो निचोड़ने की प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है, धीरे धीरे करके। तो काउल्ड प्यूजा, मशीन में तो वही शक्ति है ना, लेकिन वो एक बार में नहीं निचोड़ रहा है, वो धीरे धीरे वही पावर से चली, नहीं मशीन की पावर बढ़ाई जा रही है, वही मशीन से गुजर गुजर के आप देखिए धीरे धीरे गन्ने का पूरा जूस या कपड़ा साफ होता है, निचोड़ निचोड़ के, निचोड़ निचोड़ के आप उसको क्लीन करते हैं। तो इनर विटनेस उसको देखता है, इसलिए शांत रहता है। जब ये आपके अंदर शांति आ जाए उठा पटक से भगवान की, आप किसी तरह से विचलित नहीं हो, आप देखें कि भाई ये माँ काम कर रही मेरे अंदर, और अपनी अभिप्सा को बनाए रखें, समर्पण को बनाए रखें, दैट मीन्स वन इज नाउ पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड इन दैट, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इसकी प्रोसेस है। इवन ऑन द स्ट्रगलिंग नेचर लेफ्ट बिलो स्ट्रॉन्ग पीरियड्स ऑफ इल्यूमिनेशन केम, लाइटनिंग्स ऑफ ग्लोरी आफ्टर ग्लोरी बर्न, experience was a tale of blaze and fire, air rippled round the argosies of the gods, strange riches sailed to him from the unseen, splendors of insight filled the blank of thought, knowledge spoke to the inconscient stillnesses, rivers poured down of bliss and luminous force, visits of beauty, storm sweeps of delight rained from the all powerful mystery above. पूरा एक sentence है। अब ये जो working होती है इसमें धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो भाग जो पूरी तरह resist कर रहा था अब उसी में कोई चीज सहयोग देने लगती है, वो भाग ही कहने लगता है कि नहीं You don't want it. उस भाग के अंदर उसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो जो उसके अंदर जो एक डिस्टॉर्टेड मूवमेंट था वो चेंज होने लगेगा, और अपने आप उसकी जगह पर आप क्रोधित होते थे, अब क्रोध की जगह एक अलग करुणा जाग रही है, आपको खुद लगेगा कि अरे ये कैसे हो रहा है मेरे अंदर। तो वो जो चेंज आता है उसका वर्णन है कि इवन ऑन द स्ट्रगलिंग नेचर लेफ्ट बिलो, एक झटके में चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पीरियड्स ऑफ इल्यूमिनेशन केम, लोअर वाइटल में भी आता है जहाँ क्रोध भय सेक्सुअलिटी और भी जो मोह इन सब के अंदर एक अंदर से ही कि अरे ये क्या है, किस मोह के पाश में मैं बंधा हूँ। तो आपको ये सोच के नहीं, आप सोच के नहीं कर सकते इस चीज को, आप सोच तो ये बताएगी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हेल्पलेसली जा रहे हैं। अब उस भाग के अंदर ये चेंज आ रहा है, तो ये देखिए वो पहले लाइन थी ना, ईच पार्ट इन अस डिजायर्स इट्स एब्सोल्यूट, और फिर वो कहते हैं कि इवन इन दिस नेचर वो फ्री एसेंट मतलब स्वीकृति माँ की वर्किंग के लिए उस पार्ट को देनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी स्वतंत्र स्वीकृति नहीं देगा तो माँ थोड़ा दबाव डालेंगी तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, रिवोल्ट आ जाएगा, इसलिए माँ धीरे धीरे करती हैं। और तब क्या होता है, एक्सपीरियंस वॉज ए टेल ऑफ ब्लेज एंड फायर, एयर रिपिल राउंड द आर्गोसीज ऑफ द गॉड्स, तो देवत्व की जो सुगंध है, देवत्व का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर उसकी ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने लगता है। स्ट्रेंज रिचेस सेल टू हिम फ्रॉम द अनसीन, ऐसी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, इस प्रकार की संभावनाएँ जो अनसीन में छिपी थी, स्प्लेंडर्स ऑफ इनसाइट फिल द ब्लैंक ऑफ थॉट, नहीं जानते नहीं जानते, धीरे धीरे की इनसाइट आती, अरे ये तो ये है, अरे ये इस प्रकार से है। तो इनसाइट, नॉलेज स्पोक टू द इनकॉन्शियंट स्टिलनेसेस, रिवर्स पोर्ड डाउन ऑफ ब्लिस एंड ल्यूमिनस फोर्स, यही है गंगा स्नान, ऊपर से जो गंगा उतर रही है, गंगा यमुना सरस्वती सप्त नदियां, कावेरी नर्मदा गोदावरी, छूट गई कोई? गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा, ये सात नदियाँ हैं ना जो ऊपर से उतर रही हैं हमारे अंदर, और ये ब्लिस आनंद के अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान अंदर में उतरने लगते हैं. विजिट्स ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य बोध, स्टॉर्म स्वीप्स ऑफ डिलाइट रेन्ड फ्रॉम द ऑल पावरफुल मिस्ट्री अबाउट. धीरे धीरे भगवान हमको तैयार करते हैं अपना राज्य सौंपने के लिए. ऐसा नहीं कि वो एक दिन में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, कहते हैं हाँ ठीक है अब तुम्हें तुम्हारे हाथ में मैं दे रहा हूँ, धीरे धीरे कि तुम उसका कैसा सदुपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, कहीं तुम्हारा अहंकार तो नहीं बढ़ा चला जा रहा है, कहीं तुम इसके कारण जैसे हुआ ना कई योगियों के साथ पद भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हो, तो वो धीरे धीरे करके पोरिंग होती है. देंस स्टूप द ईगल्स ऑफ ओमनीसियंस. आप देखिए समग्रम माम, वो ज्ञान जो विस्तार में भगवान की सृष्टि को भगवान की दृष्टि से हमको समझाता है. स्टूप द ईगल्स ऑफ ओमनीसियंस. भगवान की दृष्टि बड़ी भिन्न होती है. संसार की दृष्टि में कोई चोर हो सकता है, भगवान की दृष्टि में वो वाल्मीकि छिपा हुआ है, अब आप क्या करेंगे. तो ईगल्स ऑफ ओमनीसियंस जो एकदम अलग ढंग से हमको परिचय करवाते हैं. A dense veil was rent, a mighty whisper heard, repeated in the privacy of his soul, a wisdom cry from rapt transcendences, sang on the mountains of an unseen world. The voices that an inner listening hears conveyed to him their prophet utterances and flame-wrapped outbursts of the immortal word, and flashes of an occult revealing light approached him from the unreachable secrecy. ऐसे अर्थ जीवन में प्रकट होने लगते हैं, ऐसा ज्ञान प्रकट होने लगता है हर चीज के पीछे, कि धीरे धीरे आप जिसको कहते हैं ना, वो एक शब्द यूज होता था पुराने समय में ब्रह्मवादिनी. तो ब्रह्मवादिनी केवल वो नहीं है जो ब्रह्म के बारे में कह रहा है या वेदों की व्याख्या कर रहा है, धीरे धीरे उसकी वाणी जो कह रही है वो ब्रह्म वाक्य है. सुना है ना हम लोगों ने शब्द ब्रह्म वाक्य, उसकी वाणी के अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है, उसकी वाणी के अंदर वो सत्य प्रकट होने लगता है, वो जो कह देता है वो सत्य होता है. तो यहाँ उसी का कि जब वो वेल जो पर्दा है वो हट जाता है, फिर भगवान तो विस्पर ही करते हैं लेकिन वो माइटी है. भगवान अगर कह दें विजय तेरी होगी पार्थ, किसी ने नहीं सुना है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन विजय तेरी होगी. माइटी विस्पर, अनाउंस करके नहीं बोल रहे. अनाउंस करने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो मीडिया आ जाएगा कृष्ण जी के पीछे, आप बड़े बायस्ड हो, आप यदुकुल के हो, कजिन ब्रदर हो, इसलिए आप ऐसा. मीडिया पीछे पड़ जाएगा कृष्ण जी के. कृष्ण जी किसी को नहीं कहते हैं, केवल पार्थ को कहते हैं अर्जुन डिसीशन हो गया है. वो पूछ भी नहीं रहा है क्या डिसीजन, जीत तो तेरी होनी है. ये देखिए माइटी विस्पर, विस्पर है, सब नहीं सुन रहे. प्राइवेसी ऑफ द सोल में आप जानते हो, भगवान का सैंक्शन. द वॉइसेस दैट एन इनर लिसनिंग हियर्स कन्वेड टू हिम देयर प्रॉफिट अटरेंसेस. क्या होने वाला है वो आप ना केवल देख रहे हो बल्कि आपकी वाणी में वो प्रकट हो रहा है. एंड फ्लेम रैप्ड आउटबर्स्ट ऑफ द इमॉर्टल वर्ड, अचानक उद्गीत गीत के रूप में आपके अंदर से एक भाव प्रकट हो रहा है. इमॉर्टल वर्ड आपको पता नहीं है लेकिन वो भाव वास्तव में अपने आप में एक वेद है. सामवेद की रचना से हुई ना, सारे गीत हैं. कैसे गीत हैं, वो भाव से प्रकट हो रहे हैं, भाव की तरंगों से, लेकिन इमॉर्टल है. ऐसे बहुत सारे गीत हैं, केवल सामवेद में ही तो नहीं है, मीराबाई के भजन हैं, सूरदास के हैं, कबीरदास जी की वाणी है, ये सभी तो उद्गीत हैं, ये सामवेद के. हम उसको ऑफिशियली कहें ना कहें लेकिन ये तो इमॉर्टल है ना, इसको आप कभी हटा नहीं सकते हैं. तो इमॉर्टल वर्ड एंड फ्लैशेज ऑफ एन ऑकल्ट रिवीलिंग लाइट अप्रोच्ड हिम फ्रॉम द अनरीचेबल सीक्रेसी. यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और अगले रविवार को, नेक्स्ट संडे वी विल मीट अगेन. जय माँ.